जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले कहीं जो को पविधाता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु के वचन प्रतीतन जाई सुख मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव
ब्रह्मानंदम परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् चोयेकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है गाय। रामचरितमानस में 70 बार गाय शब्द आया है, जिसमें 17 बार गाय उदाहरण है, 13 बार वस्तु और 40 बार गाय गो शब्द इंद्रियों का संबोधन है, जिसके लिए भगवान का अवतार होता है। आरंभ में 17 बार उदाहरण के रूप में गो शब्द का प्रयोग किया गया है। अधम निशाचर लीने जाई जिमी मले छवस कफिला गाई, जब सीता चोरी चली गई तो वहाँ महापुरुष कहते हैं कि वो अधम निशाचर सीता को यूं ले जा रहा था जैसे किसी कसाई के बस में कफिला गाय। यहाँ गाय एक उदाहरण है। और श्याम सुरभि पय विशद यस्ति गुणद करें सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम यश कोन सुने यस जान। श्यामा रंग की गाय काली है, दूध गुणकारी है, इसलिए सभी उसका सेवन करते हैं। हमारी कविता भी ग्रामीण भाषा में है, किंतु सीता और राम जी का पवित्र गुण है, इसलिए अवश्य सब आदर करेंगे। यहाँ गो शब्द एक उदाहरण है और 13 बार गाय वस्तु है। जब भरत ने पिता की अंत्येष्टि की, भये विशुद्ध दिए शब दाना धेनु बाजी गजबान नाना, गाय दी, घोड़ा दिया, हाथी दिए, पालकी रथ इत्यादि नाना वाहन दान में दिए, अर्थात ये एक देने लेने की वस्तु हुई। जो स्थान गज का है और वाहन का है वही गाय का। नंदी मुख शराद करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेन वशन मनी नृप विप्रन कहां दीन। भगवान राम इत्यादि चारों भाइयों का जब श्राद्ध इत्यादि किया तो भाटक माने सोना, धेनु, वस्त्र, मणियां इत्यादि राजा ने विप्रों को दान दिया। जो स्थान मणि का है, वस्त्र का है, वही गो का है, सब देने लेने की वस्तु, अर्थात ये एक संपत्ति है। जब विश्वामित्र मांगने आए तो दशरथ ने कहा, भगवान आपने कष्ट किया यहाँ तक आने का, मैं धन्य हुआ, आप जो चाहे मांग ले। मांगहु धेनु धरणी धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोषा। आप धेनु मांग ले, धरती मांग ले, धन पूरा खजाना मांग ले, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं। विश्वामित्र ने कहा, नहीं राजन, इनमें से हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमें दो बालक दे दो, राम और लक्ष्मण। तो यहां पर भी गाय, धरती, धन, खजाना एक देने लेने की वस्तु, गाय का उपयोग वस्तु के रूप में हुआ। और 40 बार गाय, गो माने इंद्रियों का संबोधन है, जिसके लिए प्रभु का अवतरण होता है, स्तुति करते हैं भगवान की कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय है देवताओं के नायक, सारे सुखों को देने वाले प्रभु, आप गो और दुज के हितेशी हैं, सिंधु सुता लक्ष्मी के स्वामी है। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा, आप सबसे अतीत, गो से अतीत, माया से अतीत, और स्वयं अपने में ही प्रसन्न हैं, गो के हितेशी भी हैं राम और गो से अतीत भी हैं राम। बताओ गो क्या है, जिसमें संसार फंसा है, भगवान उससे अतीत है। अनवध्य अखंडन गोचर गो, भगवान अवध्य है, अखंड है, वो गोचर नहीं है और नहीं गो है। गोचर माने संसार, जहां इंद्रियां अपने करणी के अनुसार बार बार पिंड रूप में जन्म लेती है, फिर अपना भोग ढूंढती है, सृष्टि में विविध प्रकार के भोग भोगती है, सृष्टि विधाता की गोचर है। तो भगवान गोचर नहीं है और न गो ही है, भला क्यों? कि सब रूप सदा सब हो इन गो, वो सर्व रूप है, सदा एक रस है, वो गो हो भी नहीं सकते। यहाँ गो इंद्रियों का संबोधन है, इन्हीं इंद्रियों का संयम करके महापुरुष ध्यान में प्रभु को पाते हैं। जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावही, पवन को जीत कर गो को निरस करके मुनि ध्यान में भगवान को पाते हैं। क्या करें, गाय का दूध सुखा दें अथवा खून ही सुखा दें, अस्थि पंजर बना दें, तब भगवान ध्यान में आएंगे, ऐसी बात नहीं। यहाँ गाय से कुछ लेना देना नहीं है, पहले श्वास को जीतो, श्वास में विचरने वाले वायु को शम करो, श्वास स्थिर करो और गो संयम करो, विषय रूपी रस से इनको अलग करो। जिस क्षण विषय रूपी रस से ये अलग हुई इंद्रियें, तुरंत भगवान ध्यान में उतर आएंगे। ये अभ्यास लंबा है, इसलिए मुनि ध्यान कब हुक पावे, या गोमान इंद्रियों का संबोधन है। वशिष्ठ के पास नंदनी थी और देवताओं के पास कामधेनु, ऋषियों के पास नंदनी, जहां इंद्रियां भली प्रकार संयत हुई, ध्यान में प्रभु उतर आए, तो यही इंद्रियां आनंद प्रदान करने वाली होती है। जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मन में इच्छा हुई कि वस्तु हाजिर। एक विश्वरथ नाम का सम्राट वशिष्ठ के यहाँ घूमते हुए आए, वशिष्ठ ने उनको आतिथ्य प्रदान किया, जो राजभवन में नहीं मिला था वो सब वहाँ ऋषि के आश्रम में मिल गया। तो बोले, अरे इतना प्रबंध कैसे हुआ महाराज, आपका फार्म कितना बड़ा? बोले बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी क्या है? बोले बिल्कुल नहीं। तब ये सब हुआ कैसे? तो बोले ये सब नंदनी की कृपा है। तो विश्वरथ ने कहा ओ नंदनी एक रत्न है, ये राजाओं के पास होनी चाहिए, नंदनी ले चलो। वशिष्ठ ने कहा नहीं, ये तपस्या का फल है, राजाओं को नसीब नहीं होती। तो बोले ले घसीट के ले चलो। बड़ा बल लगाया, नहीं प्राप्त कर सका। तब उसने तपस्या की, तपस्या में अस्त्र शस्त्र अर्जित किए, फिर लड़ा, फिर भी नहीं पा सका। तब उसे ये ज्ञान हुआ, धिक्कार है छात्र बल को, ब्रह्म बल ही सर्वोपरि, मैं आज से ब्रह्म ऋषि बनूंगा। भजन में लग गए, वो ब्रह्म ऋषि हो भी गए और नंदनी को पा गए। ये कोई गाय नाम का पशु नहीं, माना कि सृष्टि में गो नाम का पशु है, लेकिन ये वो इंद्रियों का संबोधन है। जब ये संयत हो जाती है, प्रभु ध्यान में अब उतर आते हैं, तब ये आनंद, सहज आनंद प्रदान करने वाली होती है। ऐसा भगत मन में भी इच्छा कर दे, तुरंत उसकी व्यवस्था हो जाया करती है। उस समय ये होती है नंदनी। और जब देवी संपत भली प्रकार हृदय में ढल गई, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है, उस वक्त ये होती है कामधेनु। जो भी कामना आई कि पहले से तैयार, उसे मांग लो, हाथी घोड़ा देश विदेश सब तैयार। अरे गाय पशु होती तो केवल दूध देती, ये वस्तुएं कहां से? धेनु एक उपमा है। जब देवी संपद भली प्रकार सद जाती है हृदय देश में, उस टाइम परम देव परमात्मा का देवत्व उतर जाता है। उसी वक्त यही इंद्रियां सारी कामनाओं की आपूर्ति स्वतः करने वाली होती है। आप संकल्प बाद में करोगे, वस्तु पहले हाजिर। इसलिए गो हमारे वैदिक ऋषियों से लेकर आद्योपांत इंद्रियों का संबोधन है। एक पूर्व युग की सत्ययुग की कथा है। उदालक नाम के ऋषि, उन्होंने घन घोर तपस्या की। आस्ते आस्ते उन्होंने 100,000 गाय इकट्ठी की। गो गाय सब तो अब है, अपभ्रंश है, हिंदी अनुवाद है क्षेत्रीय भाषा का। गो एकत्रित की, जो अंतिम तृण चुन चुकी थी, अंतिम गोबर कर चुकी थी, अंतिम दूध दे चुकी थी, और शांत सम खड़ी 100,000 गाय एकत्रित किया और विप्र को दान देने चले। नचिकेता उनका पुत्र था। महर्षियों के शिष्य भी गुरु पुत्र ही कहलाते हैं। उसने कहा गुरुदेव मुझे आप किसे देंगे? बोले जाओ मैं यमराज को देता हूँ। नचिकेता पीछे लग गया यमराज के। यमराज ने बहुत टालना चाहा। बोले वत्स तुमको मैं राज्य देता हूँ, चक्रवर्ती सम्राट बनाता हूँ, तुम्हारे पिता को बना देता हूँ। बोले नहीं भगवान, यदि आप ही की मुझ पर दृष्टि पड़ गई है तो मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। तो बोले अरे नचिकेता मान जाओ तुम, मैं विष्णु पद देता हूँ, तुम्हें शिव धाम देता हूँ। तो बोले नहीं प्रभु, मुझे केवल आत्मज्ञान चाहिए। बहुत ठोका बजाया, देखा कि परीक्षा में खरा है, ये पात्र है। तब उस यमराज ने, उस धर्म ने उसे आत्मज्ञान दिया, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, वो ज्ञान प्रदान किया। वास्तव में उदालक का मतलब होता है अभ्युदय की ओर गमन करना, सहज प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा, उनकी ओर गमन करना। प्रभु की स्वरूप की ओर बढ़ते बढ़ते जब सहज प्रकाश की स्थिति आ जाती है, न तद्भाष्यते सूर्योन शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन उस सहज स्वरूप को न अग्नि ने सूर्य ने चंद्रमा ही प्रकाशित कर सकता है, वो परमात्मा सहज स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जब उदय अभ्युदय वहां तक हुआ, ता फिर ये इंद्रियां तो 10 है, लेकिन इनकी प्रवृत्तियां अनंत है, लाखों हैं। इन इंद्रियों की जो लाखों विषय उन्मुख प्रवृत्तियां थी वो सिमट के शांत सम खड़ी हो गई, अंतिम तृण ले चुकी, अंतिम भजन कर चुकी, अंतिम मल त्याग कर चुका। इंद्रियों के अंतराल में जो मल आवरण विक्षेप है, जन्मांतरों के संस्कार का जो संग्रह है वो भी अंतिम त्याग कर चुका, अंतिम परिणाम दे चुकी। अब वो न शुभ परिणाम देगी न अशुभ। ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, उनके कार्यकलाप का न शुभ संस्कार पड़ता न अशुभ। जब इस कसौटी पर आ गई गो, तब फिर वो विप्र को दान देते हैं। ब्रह्म स्थित महापुरुष सदगुरु के प्रति भली प्रकार समर्पण की स्थिति आती है। उस टाइम यम माने होता संयम, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, पांच यम है। यम शब्द यहाँ बदनाम हो चुका है। यम का अर्थ होता है यमराज, जो हमें मृत्यु देगा, ऐसी बात नहीं है। यम माने होता है सर्वांगीण संयम, जहाँ सदा संयम, उस वक्त चित नचिकेता, न चित्त करता, चित्त अकर्ता हो जाता है। इंद्रियों की लाखों प्रवृत्तियां जब शांत सम स्थिर हो जाती है, अंतिम मल त्याग चुकी, अंतिम संकल्प कर वो चिंतवन कर चुकी, परिणाम दे चुकी, तहां फिर ये चित्त अकर्ता हो जाता है। न चित्त करता, ऐसा निरोध चित्त ही उस जिस क्षण हुआ, संयम पूर्ण हुआ, इस संयम के सदते ही इसकी आड़ में जो खड़ी सत्ता है उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा की वह परशक्ति जो न्याय करती है धर्म। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, ये लेओ वो लेओ, स्वर्ग लेओ, वैकुंठ लेओ, धन लेओ, ऐश्वर्य लेओ, लेकिन साधक की श्रद्धा जब लक्ष्य से नहीं चलायमान हुई तब वो स्वयं साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो जाते हैं, सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं और अपनी स्थिति का बोध करा देते हैं। उसी का नाम है आत्मदर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस कर्म को किए बिना न कोई भगवान को प्राप्त कर सका है और नहीं भविष्य में कोई कर सकेगा, किंतु कर्मों की पूर्ति में आत्मा जहाँ विदित हो गई, आत्म तृप्त हो गया, आत्म स्थित है, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं। प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, करे तो कोई लाभ नहीं, छोड़ने से कोई हानि नहीं। फिर भी वे महापुरुष पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए कर्म में बरतते हैं, स्वयं के लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं। तो जब आत्मदर्शन ही हो गया नचिकेता को, तो स्वरूपस्थ हो गया, किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं रही। ये रूपक है साधना के, योग साधना और संयम की। न की कोई अलग से गाय थी पशु नाम की। जर्मन एक बार भारतीय वेद पा गए, सब पर बड़ी लंबी खोज हुई, एक श्लोक ऐसा मिल गया कि गो जब पृथ्वी से ऊपर उठ जाती है, आकाश में खो जाती है, लौट के पृथ्वी पर नहीं आती। एक दार्शनिक एक महीना अपने कमरे में बंद रहा, इस एक वाक्य पर विचार करता रहा कि इसका मतलब क्या। अंत में उसने ये निर्णय दिया कि भाई भारत में गो नाम का कोई पक्षी होता है, वो पृथ्वी पर चलता है, यदा कदा उड़ जाता है, फिर लौट के नहीं आता। क्या भारत में ऐसा कोई पक्षी है? गो माने इंद्रियों का संबोधन है। ये इंद्रियां सिमट कर जब संयत हो जाती है, देहाध्यास से जब ऊपर उड़ जाती है, तो आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। ये संकल्प विकल्प से रहित जब होने लगती है तो आकाशवत, फिर सने सने आकाशवत होती चली जाती है। सर्वथा शांत हो जाने पर उस परम तत्व परमात्मा का दर्शन और प्रवेश पा जाती है, फिर लौट के आवागमन में कभी नहीं आती। वो पिंड रूप में इंद्रियां फिर आकार धारण नहीं करती, गो पृथ्वी पर नहीं आती। अर्थात शरीर रूपी पृथ्वी का आकार प्राप्त नहीं करती, वो भवबंधन से मुक्त हो जाती है। आज हम कहते हैं गो माने इंद्रियां, किंतु वैदिक काल में गो का माने इंद्रिय नहीं था। गो शब्द जहाँ मुँह से निकला सब समझ जाते थे कि हाथ पांव नाक कान इन्हीं की ओर इंगित किया जाता है। कालांतर में भाषाएं बदल गई, इसलिए आज समझाना पड़ता कि गो माने इंद्रिय। किंतु वैदिक काल से जितने महापुरुष हुए हैं उन सब की दृष्टि में गो केवल इंद्रियों का संबोधन, इनके संयम की स्थितियों का चित्रण है, अन्य कुछ नहीं। इस इंद्रियों का संयम हम कर भी तो नहीं सकते, क्यों, हमारे पास है क्या? गो गोचर जहां लगी मन जाई, शोषब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना कर सकता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, शोषब माया जाने भाई, वो माया है। माइक क्षेत्र का ही छोटा बड़ा निर्णय है, सत्य कदापि नहीं। मनुष्य के पास इंद्रियां मन छोड़ के और है क्या? इनसे हम कुछ भी निर्णय ले ले वो माया है। ऐसी परिस्थिति में हम सत्य को, उन परम तत्व परमात्मा को कैसे जाने? उसके लिए एक ही तरीका है, जब हमारा संयम ऐसा हो कि प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे, उनके संरक्षण में चलकर ही पुरुष उन परमात्मा तक की दूरी तय कर पाता है। इसलिए अवतार गो के लिए होता है। अवतार लेके भगवान इस इंद्रियों को दिशा देते हैं, मन को दिशा देते हैं कि ये कर और वो मत कर। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ा लिखा कुछ जान भी तो नहीं सकता, ये तो प्रत्यक्ष दर्शन है। शबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, वाल्मीकि भी अनपढ़ थे, ये तो आंखों देखा हाल, अभ्यास का परिणाम। किंतु कबीर संत थे, अभ्यासी थे, उन्होंने पाया इस इंद्रियों के समूह का एक चित्रण दिया। भाई रे गैया एक विरंची दियो है, भाई रे गैया एक विरंची दियो है, गैया भार अभार भो भारी, गैया एक विरंची दियो है, नवनारी का पानी पियत है, त्रिखा त्यून बुताई, गैया एक विरंची दियो है। नौ नाली का पानी धुआंधार चल रहा था, सब पी गई, फिर प्यासी की प्यासी, कैसी है ये गैया? कोठा बहतर ओलो लावे, वज्र किवाड़ लगाई, खूंटा गाड़ी दवरी दृढ़ बांधे, तयो तोर पराई, गैया एक विरंची दियो है। चार वृक्ष छो शाखावा के, पत्र अठार है भाई, एतिकले गम की हिसी गैया, गैया अतिरे हरहाई, गैया एक विरंची दियो है। ईसातों ओ रोहे सातों, नवेरु चव देह भाई, एतिक गैया खाय बढ़ायो, गैया त्यून अघाई, गैया एक विरंची दियो है, गैया भार अभार भो भारी, गैया एक विरंची दियो है। पुरता मेरा ती है गैया, शेत सगी है भाई, आवरण वरण कछु नहीं वाके, खद अखद हूँ खाई गैया एक विरंची दियो है। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिवशन का दिक भाई, सिद्ध अनंत वाकी खोज पड़े हैं गैया किन हुन पाई, गैया एक विरंची दियो है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, जो यह पद अर्थावे जो या पद को गाय विचारे, आगे हुई निर्वाहे संतों गैया एक विरंची दियो है। गैया के भार अभार भव भारी, गैया एक विरंची दियो है। कबीर का दृष्टिकोण वही है जो वैदिक ऋषियों से लेकर आद्योपांत महापुरुषों का रहा है। कबीर का कहना है केवल एक गाय, दो चार नहीं, गैया एक विरंची दियो है। विधाता ने एक गाय प्रदान कर दी है, कैसी गैया, और गैया तो पांवों से चलती है, वो आपके सिर पर लदी है। तो गैया के भार अभार भव भारी, गैया इतनी बजनी कि अभार है असह है, भला उसका भार है कितना, भव भारी, पूरा संसार का भार इस गाय का भार है। गो का भार इतना भयंकर, जो भी इंद्रियों के दायरे में जीता है त्राहि त्राहि कर रहा है। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर, हरिश्चंद्र एक हरि भजन बिनु अंत धूल की धूल। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल ना सुना। जब तक हम कुछ हमने प्राप्त कर लिया आशाएं भड़क जाएगी, हमारी इच्छा तृप्त नहीं होगी, उसमें और चौगुनी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए उत्तरोत्तर वस्तु ढूंढता ही रहता है। एक पलक एक पग आगे बढ़ गया थोड़ी संतुष्टि हुई, और जो हमारा इस तरह से एक पग नीचे हो गया तो त्राहि त्राहि ब्लड प्रेशर हाई सब कुछ हो जाता है। ये सब गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का सामूहिक नाम है इच्छा, सब इसी का दबाव है। भलाई गाय खाती क्या है पीती क्या है, तो नवनारी का पानी पियतु है, त्रखाते न बुताई नव द्वारे पूरे देही। ये नव दरवाजों वाला शरीर है, ये एक नगरी है, नवो इंद्रियों से रात दिन विषय रस स्राव होता रहता है, ये पीती रहती है इच्छा, गो का सामूहिक स्वरूप, लेकिन तृप्त कभी नहीं हुई। रावण को पूरा विश्व एक साथ मिल गया कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनु धारी, दशमुख सब वरती नर नारी, लेकिन फिर भी एक औरत की कमी ही रह गई, उतनी इच्छा अधूरी लेके मर गया। क्यों, एक प्राप्ति आगे वाली प्राप्ति की इच्छा को जन्म देती है, इसका कभी अंत नहीं, सारे आवागमन का बोझा उसी का भार है। तो त्रिखा तेऊ ने बुताई, नवो इंद्रियों से रात दिन विषय रूपी रस ग्रहण करती है, तृप्त कभी नहीं हुई। फिर इस गैया को महापुरुषों ने इसको ढूंढ निकाला कि कोठा बहतर ओलो लावे वज्र की वाड़ लगाई। कोठा माने होता है कमरा, शरीर एक हृदय एक कमरा है, हृदय बहुत गंदा है, इसमें मल आवरण विक्षेप भरा है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की रीलें पड़ी हुई है, न जाने अगली रील कैसी और किस योनि में फेंक दे। इसकी पहले सफाई करके, ये शुद्ध विशुद्ध करके हृदय को बेहतर माने होता, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हृदय रूपी कोठड़ी को बिल्कुल शुद्ध करके गो को समेट के उसमें लो लगा दिया, इंद्रियों की प्रवृत्ति को समेट के हृदय के अंदर लो लगा दिया, लेकिन फिर भी टिकी नहीं। तब खूंटा गाड़ी दवरी दृढ़ बांधे, खूंटा एक गड़ी वस्तु का नाम है जो स्थिर होता है, श्वास ही खूंटा है। कबीर ने कहा, चलती चकिया देख के दीहा कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचान खोए। तो उनका एक प्रिय शिष्य था कमाल, बोले नहीं गुरु महाराज, साबित बचने का भी तरीका है। तो चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कीली से जो लग रहे ताही काल ना खाए। कीली है श्वास, श्वास से जो कोई लग जाए, मन को सब ओर से समेट के श्वास में सूरत लगा दे तो उसको काल नहीं खाएगा। तो श्वास ही खूंटा है, श्वास चलाए मान है, इसमें तरंगे लहरें उठती करती है, भली और बुरी सदा उठा करती है। इसको पहले गाड़ो, श्वास को निरोध करो, स्थिर करो, और सूरत की रस डोरी से श्वास में इस मन को बांध दो। ये बांधने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा रात दिन। दवरी दृढ़ बांधे, रात दिन दौड़ लगाओ और बांधो, रात दिन श्रम करो। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोवो तो लो लगा कर सो, सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले। आठ पहर लागा रहे तार टूट ना जाए, अहर निस श्रम करो, यही है दौड़ लगाना। श्वास को स्थिर किया, अहर निस श्रम करके दौड़ के दृढ़ता से बांधा, दौरी दृढ़ बांधे हूं तैयो तोर पड़ाई, तभी किसी न किसी बहाने से ये तुड़ा के भाग ही जाती है। कभी कभी श्वास बिल्कुल स्थिर है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार उभर के सामने आया, एक धक्का दे दिया, भाग खड़ी हुई। कभी किसी भगत ने कोई गहरा दुख बता दिया तो महापुरुष लोग भी दो मिनट के लिए चौक जाते हैं, तुड़ा के भग गई। तो खूंटा गाड़ा श्वास को स्थिर किया, चंचल श्वास को स्थिर किया, अहर निस श्रम करके दौड़ के दृढ़ता से इसमें सूरत की डोरी से बांधा, तैयो तोर पड़ाई, तब भी ये इंद्रियां भटक ही जाती है, सूरत बहक ही जाती है। भगवान शिव को पार्वती ने ध्यान में बैठाया, शरीर तो बैठा था, भोलेनाथ गायब थे। पार्वती ने निरीक्षण किया कि भोलेनाथ तो है नहीं, केवल शरीर बैठा है, प्रभु गए कहाँ। तो पार्वती ने ध्यान से देखा तो बोले, ओ आकाश में मृतलोक की स्त्रियों के साथ दौड़ धूप कर रहे हैं। तुरंत पार्वती पहुंची आकाश में, उन मृतलोक की स्त्रियों को काट के गिराया तलवार से, और भोलेनाथ को लाके पुनः ध्यानस्थ कर दिया। ये एक रूपक है, शंकारी से शंकर है, शंकाओं से अतीत होकर कोई महापुरुष, कोई भक्त जब चिंतन में ध्यान में लगता है। तो हम तो बैठे हैं, शरीर बैठा है, शांत हैं, जाग भी रहे हैं, और सूरत भग गई। वो किसी विकार को लेकर उसका चिदाकाश में शून्य में नक्शे बनाने लगी, मृतलोक की प्रवृत्तियों के साथ, स्त्रियों के साथ गणित लगाने लगी। यदि प्रेम ही पार्वती है, वृत्ति में प्रेम का प्रवाह है, तो तुरंत निरीक्षण होगा। बोले, अरे शरीर बैठा है, सूरत तो गायब है, तुरंत दौड़ के जिन जिन के संयोग है उनको त्याग रूपी तलवार से काटकर पुनः सूरत को लाके ध्यान में स्थिर किया। जहां भी सूरत जाए बार बार लाके उसको स्थिर करो, इसी का नाम अभ्यास है। तो खूंटा गाड़ी दवरी दृढ़ बांधे तैयो तोर पड़ाई, तब भला तुड़ाती किन माध्यमों से है। पहले तो सांसारिक दृश्यों से, और कहीं भजन पकड़ में आ गया, कुछ बोले डोले का सहुर आ गया तो गरमा जाता है शास्त्रों को लेके, तो चार वृक्ष छह शाखावां के पत्र अठारह है भाई, चार वेद छह शास्त्र अठारों पुराण, एतिक ले गम की ही सी गैया, इन सब को लेके अकड़ गई गैया। बोले वाह मेरे ऐसा विद्वान और कौन, मैं अब वेद वाक्यों से ही चर्चा करूंगा। इतना लेके वो गम अहम में आ गई गैया, सारी इंद्रियां सिमट के उसी से अकड़ गई। गई तो थी भगवान को ढूंढने, प्रभु से भेंट करने, और कुछ पोथा लेके अड़ गई, संतुष्ट हो गई, इसलिए है बड़ी हराई। गैया अतिरे हरहाई, गैया एक विरंची दियो है। गैया बड़ी हराई है, हराई वो कहती है लाइन को छोड़ के बे लाइन चले, मार्ग को छोड़ के कुमार्ग चले, भला किताबों में संतुष्ट हो गई। बांधने पर भी तुड़ा के भाग जाती, मैं गया जब न भजन सही होता तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मेरे समान कौन, ये भी भागना हुआ। साधक को चाहिए कि जब तक लक्ष्य न मिल जाए, बीच में शास्त्री सही, जानकारी ही सही, इन जानकारियों के द्वारा जिन प्रभु को ढूंढते थे वो तो नहीं दिखाई पड़े, कदाचित बीच में इन वातावरण में उलझ जाती तो बड़ी हराई, धोखा दे गई। अब इस गैया के विचरण का खाद्य सामग्री स्थान कौन सा, ये खाती क्या है, तो गैया का भोजन बताते। सातों ओरो है सातों नवयरु चव देह भाई, शास्त्रों में आता है सात पतन के लोक हैं, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, इस प्रकार सात पतन के रास्ते, वहां तक तो नीचे जाती है अधोगति में, और सात उत्थान के रास्ते जिसमें ब्रह्मलोक गोलोक स्वर्गलोक महलोक महरलोक, सच पूछो तो योगपद की सात भूमिकाएं हैं, सुविच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वा पक्ष असंग शक्ति पदार्थ भावनी और तुरीय ग्रह। पहली उत्थान ईश्वर की ओर उत्थान करने के सात स्टेज हैं। पहला है सुविचार, शुभ के लिए विचार करो। दूसरा है नहीं शुभ इच्छा, शुभ के लिए इच्छा करो, फिर सुविचार उसके ऊपर विचार, जहां विचार स्थिर हुआ तो फिर तनु मानसा, अब तक तो हम शरीर में तन वाले थे अब मन में शरीर वाले हो गए, फिर सत्वा पक्ष जो नित्य सत्य है परमात्मा उनका पक्ष सुदृढ़ हो गया, तो हां असंग शक्ति संसारी में रह के भजन करना, संग तो गली गली में कदम कदम में, संग आवे और असंग रहने की क्षमता, पदार्थ भावनी संसार एक पदार्थ है, इंद्रियों का खाद्य पदार्थ है, इसका अभाव ये एक अवस्था है, ये इस तरह आता है। तब सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जहां माया दिखाई देती थी वहां भगवान का संचार दिखाई देने लगता है, पदार्थ का अभाव हो जाता है, जाएगी भी तो कहां जाएगी, निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध, जहां भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के स्वरूप को खड़ा पाया, अब भोग ढूंढे तो कहां ढूंढे, इसका नाम है पदार्थ भावनी, पदार्थ का अभाव, संसार के भोग पदार्थों का अभाव और ईश्वरीय संचार। इसके बाद अंतिम स्टेज है तुरीयेगा, मन एक तुरंग है, इस पर अस्वार, पहले मन हमें भटकाता था अब हम जिधर चाहे उधर रख सकते, ये सात भूमिकाएं भगवत पथ की है, जहां इस सातवीं पार किया तो भगवत्ता है, इस पर कबीर बल देते हैं, ये भी गो का ही क्षेत्रफल है। तो ईशातों कौन पतन वाली मार्ग, वहां भी गैया ही विचरती है, ईशातों और ओहे सातों ऊर्ध्वरेता स्थिति की सात भूमिकाएं, सात लोक, नवयरुचव देह भाई, पृथ्वी के नवखंड और विधाता के चौदह लोक। ए तिकले गैया खाय बढ़ायो, एक गाय का ही सब भोजन है। इंद्रियें इन समस्त योनियों में भ्रमण करके आई है गैया। ए तिकले गैया खाय बढ़ायो, इन सब के उपभोग इसने किए हैं। गैया तेयो ने अघाई, गैया एक विरंची दियो है। गैया तब भी तृप्त नहीं हुई। काग भुसुंड कहते हैं, कौन सो जोनी जन्मे जहन नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जगमाई, देखे हूं सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। देव दानव ऊंच नीच ब्रह्म पर्यंत दूरी हमने तय की, सब योनियों में भटका, लेकिन इस बार जैसा मैं सुखी हुआ किसी योनि में कभी नहीं हुआ। क्यों? यही तन राम भक्ति मम जामी, इस कौवे के तन में मुझे राम की भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए प्रिय नहीं परम प्रिय। तो इस समस्त विधाता की सृष्टि को गैया ने खाया है, उपभोग किया है, हर योनि का उपभोग किया है, खा के खत्म भी कर दिया भोग, लेकिन पेट कभी नहीं भरा। गैया बड़ी खतरनाक, भला इस गैया का स्वभाव कैसा है, इसका प्रीति कर घर कौन सा है? तो पुरता में रहती है गैया, सेत सगी है भाई। भगवान का नाम त्रिपुरारी है, जेही पर कृपा न करें पुरारी, सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। चाहे त्रिपुर कहो चाहे पुरारी कहो, ये सृष्टि एक त्रिगुणमयी प्रकृति त्रिपुर है। इसी पुर में, इसी त्रिगुणमयी प्रकृति में अनुरक्त है गैया। इंद्रियां तो भोग चाहती है, ये सदैव सुख चाहती है, ये भगवान को कभी नहीं चाहती, इसलिए केवल इस माया नगरी में अनुरक्त है गैया। इस त्रिपुर में अनुरक्त है गैया, त्रिपुरता में रहती है गैया, इसी नगरी में अनुरक्त है ये गैया। और शेत सगी है भाई, झूठ मूठ की बेपैसे की रिश्तेदार बनी हुई है ये इंद्रियें, ये मन जहां तहां जुगाड़ पा जाता वहां संबंध जोड़ लेता है, लेकिन सारे रिश्ते नाते झूठ। जहां श्वास की डोरी का क्रम टूटा तो शोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, ये व्यर्थ के रिश्ते थे, यदि सच होते तो कोई तो साथ चलता, कभी नहीं। इसलिए सेत माने मुफ्त की, सेत सगी है भाई, अत्यंत सगी रिश्तेदार है ये। अवर्ण फिर ये कोई कहो कि मर्यादा हो इसके पास, वो भी नहीं। अवर्ण वर्ण कछो नहीं मां के, इसका कोई शुद्ध कुलीन वर्ण नहीं है, न इसका कोई अवर्ण है। ये जिस जोनी में गई वही भोजन किया और उसी रहनी में रही है। एक महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, ऋषभदेव के सुपुत्र। उन सम्राट को एक दिन संसार फीका लगा, उनको इतना नशा था अपनी और चक्रवर्ती सम्राट के पद का कि बोले, महामंत्री जरा इस पहाड़ की शुभ्र शिलाओं में मेरा यशो गान लिखवाओ। मंत्री लौट के आए, बोले, राजन कोई शिला ऐसी नहीं जिस पे न लिखा हो यशो गान, कहिए तो मिटा के लिखवा दूं। तब भरत स्वयं चढ़े और देखा, एक से एक महाराजा धीराज, इंद्र का कान पकड़ के झटक दिया, सिंहासन अपने ले लिया, बड़ी बड़ी यशो गाथा। बोले, ओ ये यशो गाथा भी एक भ्रम, इनका तो यशो गान लिखा हुआ है जो किंवदंतियों में नहीं, इतिहास में नहीं, मूक शिलाओं में कुछ लिखा अवश्य, ये तो हमारा एक भ्रम है। तुरंत उन्हें वैराग्य हो गया, क्योंकि एक महापुरुष के लड़के भी थे। भरत मुनि दिगंबर भेष में रहने लगे, राजपाट सारे भोग तो देख ही लिया, वस्त्र कौन सा उन्हें सुख देता है। निवृत्ति हो चली थी, किंतु जहां परीक्षा की घड़ी आई तो जंगल में शेर दहाड़ा, भय बस एक मिर्गी जंप करके भागी। प्रसव काल था, मृग वो बच्चा वहीं पैदा हो गया कुटिया के ठीक सामने। वो मिर्गे का बच्चा उठ के मैं करके लगा घूमने, भरत को दया आ गई, पाल लिया, बड़ा सुहावना था। मिर्गा जब थोड़ा युवा हुआ छलांग मारा जंगल में ओझल हो गया। भरत चिंतित हो गया, अरे ये तो चीते का मुंह सूंघ लेगा, बहलिए के भी पास चला जाएगा, कहीं शेर ने खा ले, अब तक आया नहीं। ये सोच ही रहे थे कि वो क्षण उनके इस शरीर का अंतिम क्षण था। अंतिम क्षण में यही सोचते सोचते शरीर देहावसान हो गया। अगला जन्म मिला तो मिर्गी का मिला, किंतु मृग योनि में उनके ज्ञान था कि अरे मैं भरत मुनि और ही चौपाया हो गया एक आसक्ति की वजह से। फिर उस शरीर को भी हट करके त्यागा, फिर एक विप्र के घर में जन्म लिया, वहां भी भरत ही नाम पड़ा। तो निवृत्ति के करीब पहुंचे हुए महापुरुषों को जब इन अधम योनियों में आना पड़ता है, तो आप हम यदि कदाचित गए ही हों तो कौन बड़ी बात, जाना ही पड़े तो कौन बड़ी बात। और उस योनि में मालपुए थोड़े ही मिलेंगे, बैठती थोड़ी मिलेगी आपको, वहां तो घास ही दूब मिलेगी और क्या। कदाचित गिद्ध जन्म गए तो सड़ा मांस। तो इस गो के इन इंद्रिय समुदाय के न कोई वर्ण है न अवरण है। आज जो आपके लिए अखाद्य है अगली योनि में वही पवित्र भोजन है। सुअर हो गया तो हुआ, सवेरा तो सीधे मेले में जाके लट गए। आज हम जिससे नाक सकोड़ते हैं उस टाइम पौष्टिक पदार्थ है। जो कायदे से भोजन पाता है उस सुअर की बॉडी देखो ना, चर्बी झूलने लगती है, उनके लिए वही पौष्टिक पदार्थ है। इसलिए गो माने इंद्रिय समुदाय का न तो कोई शुद्ध वर्ण है न कोई बुरा वर्ण है। तो अवर्ण वर्ण कछु नहीं वहां के, भोजन क्या करती है, खद अखद हूं खाई गैया एक विरंची दियो है। जो खाद्य है सेवन योग्य है, जो अखाद्य है सेवनीय है, उन सब को ये खाती आई है और खाएगी। इस पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई। ब्रह्मा विष्णु शिव सनत सनातन सनत कुमार नारद ये सब खोज के लिए निकले। सिद्ध अनंत वाकी खोज पड़े हैं, अनंत सिद्ध अनादि काल से इसी गैया की खोज में चले, किंतु गैया की नहुन पाई गैया एक विरंची दियो है। किंतु किसी ने आज तक गैया को देखा नहीं, पाया नहीं, पकड़ नहीं पाए। क्यों? कि जहां साधना की पूर्ति काल आया तो इंद्रिय संयत हुई और सर्वथा जब निरुद्ध हुई तो मिट गई। जप मरे अजपा मरे, इंद्रिय संयम करने के लिए जाप प्रमुख साधन है, नाम जप। लेकिन जप की भी कई श्रेणियां हैं। जप अनिवार्य, जप मरे कब, जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरे कब, जब अनहद की पकड़ आ जाए। अनहद हूं मरी जाए भला वो कब, उसकी आवश्यकता भी कब नहीं रहेगी। सुरत शमानी शब्द में ताही काल ना खाए, सुरत कहते मन की दृष्टि को। ये जब श्वास में विचरने वाले शब्द को सुनते सुनते सुरत शब्द में समा गई, शब्द मात्र शेष रह गया, ताही काल ना खाए। काल से अतीत अकाल पुरुष परम तत्व वो वही शेष बच रहता है। भगवान को काल खा लेता होगा तो आपको भी खा लेगा। तो सूरत के समाहित होते इंद्रियों का आकार मिट जाता है, ये प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है। फिर ईशावासम मिदम सर्वम यत किंचित जगतियाम जगत, सर्वत्र ईश्वर का वास है, किंचित भी लेस मात्र भी कहीं जगत है ही नहीं। नहीं, ये गो अपना स्वरूप खो देती है कब, जब सूरत शब्द में समा जाती है। इसलिए खोज के लिए निकले जरूर, जो भली प्रकार संयम सदा, तो गैया सूरत जहाँ शब्द में समाई, गैया भी उसी में विलीन हो गई। तो गैया किन्हु न पाई, किसी ने प्राप्ति नहीं किया, ढूंढते ढूंढते जब भली प्रकार करीब पहुंचे तो भगवान की भगवत्ता में विलीन हो गई। अर्थात इसके विलीन होने में ही मुक्ति है कि मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाका कछुन चाहिए सोई सहन सह। मन मरा तो माया मर गई, क्योंकि माया जिस पर रेले होती थी वो धरातल मन था। जब वो धरातल ही मिट गया तो माया किस पर प्रसारित हो। ताहंसा बेपरवाह, जो भक्त है ये जीव, ये निश्चिंत हो जाता है। क्यों? कि जाको कछुन चाहिए सोई सहंसा। यदि परमात्मा अलग होता तो चाह अवश्य होती, जब वो भी अलग नहीं रहा, जब वो भी अलग नहीं रहा तो चाह करें तो किसकी करें। मन के मिटते ही माया मिट जाती है। पहले इंद्रियों का समूह दमन होता है, फिर मन का समन होता है। निरोध मन भी जहाँ विलीन हुआ तो इंद्रियों और मन का आकार शांत हो गया, तहाँ फिर परम तत्व परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त छा जाता है, व्याप्त हो जाता है। इसलिए गैया किन हो न पाई, अंत में ये मिलती नहीं बल्कि मिट अवश्य जाती है। जब तक जिंदी है तब तक तो कष्ट देगी ही। अंत में संत कबीर कहता है ये अनिवार्य है, मोक्ष का एक रास्ता यही है कि आप इंद्रिय संयम करें। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों जो यह पद अर्थावे। कबीर कहता संतों ध्यान दो, क्यों? कबीर जानते थे कि मैं जितना गोपनीय ढंग से प्रस्तुत करता हूँ सबको समझने की क्षमता नहीं हो सकती। इस मानव समाज में जिनमें वो क्षमता थी वो थे संत। कबीर की क्लास के छात्र हैं संत, उन संतों को उद्देश्य बनाकर कबीर ने अपनी वाणी का प्रसारण किया। तो कहत कबीर और सुनो भाई संतों जो यह पद अर्थावे, ये जो गो वाला जो प्रकरण है, नव नाली का पानी पी गई, खूंटा गाड़ के पवित्र कोठे में वज्र किवाड़ में बांधा तब भी तुड़ा के भग गई, चराचर जगत उसका भोजन तृप्त कभी नहीं हुई, ब्रह्मा विष्णु सब सिद्ध खोज आए लेकिन पाया कोई नहीं, जो यह पद अर्थावे, जो इस पद में बताया हुआ जो अर्थ है उसको प्राप्त कर ले, जान ले। या पद की जो गाय विचारे, इस पद में बताई वर्णित गाय पर जो विचार कर ले, आगे हो निर्वाहे गैया एक विरंची दियो है। जो इस पद में बताई हुई गाय उसके अर्थ में समझ ले, उसमें ढल जाए, वो आगे होके सब का निर्वाह करता है। वो स्वयं सदगुरु है और दूसरों को तारने की, निर्वाह करने की, निवृत्ति प्रदान करने की, इस जगत में जीने की कला वो जानता है, वही सिखा सकता है। वो सदगुरु की स्थिति है भाई रे। महापुरुषों की दृष्टि में यावन मात्र जगत उनका अपना होता है, इसलिए कहता भाइयों सुनो, एक ऐसी गैया जो विधाता ने, देव ने हमको प्रदान की है। गैया है भजन में कितनी कि गैया भार अभार, उसका भार अशय है। कितना भार है कि भव भारी, सारे भव माने आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्कर, ये सारा चक्र इस गौ का ही भजन है। और अभार है जो इसके इसके आश्रित है, वो तड़पता ही रहता है, वो रात दिन दबा रहता है, अभार है किंतु घूम फिर के प्यारा वही लगता है, छुटकारा पाए तो जाए कहाँ। इसलिए कहते हैं कि जो ये पद अर्थ आवे, आगे हो निर्वाहे, वो सबको आगे बढ़ के सबका निवारण कर सकता है ईगो के संकट से, गोतीत स्थिति दिला सकता है। कबीर ने एक पद में अंगित किया कि माता मारे परम पद पावे, पिता बधे सुख होई, गो काटे वैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोई। माता को मार देगा वो परम पद पा जाएगा, बड़ा सुनने में अनर्गल लगता है, और पिता मार डालो तो सहज सुख पा जाओगे। क्या है बवाल? भगवान ये योगिक शब्दकोश है, एक साधना की एक लड़ी कड़ी है इसमें। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये त्रिगुणमयी प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ, और माता पिता तो निमित्त मात्र है, परमात्मा स्वयं परम तत्व परमात्मा ही परम चेतन बीज रूप से पिता और प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता। तो इस माया, इस माता का जो दमन कर ले वो परम पद प्राप्त कर लेगा। परम पद है परमात्मा, परम पद प्राप्ति के साथ वो दिखाई पड़ेंगे परम तत्व, शाश्वत तत्व, परम धाम। उन्हें जानकर वही हो जाता है, भगवान जब अपनाते हैं तो फिर अलग से रख दिया तब तो बेचारा जीव का जीव अपनी विभूतियों से आप्लावित कर देते हैं, उन अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं, जो भगवान है अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। तो सुर शरी मिले सो पावन कैसे, ईश यानी सही अंतर जैसे, एक गिलास गंगा जल गंगा से स्पर्श करवा दो, बताओ गिलास भर नाम रहेगा कि गंगा भर? गिलास की संज्ञा मिट जाएगी और गंगा का धारा प्रवाह सबके सामने विदित होगा। इस ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर का विशुद्ध अंश है आत्मा, साधना के सही दौड़ में पढ़ कर इंद्रियों के संयम की उस कसौटी काल में जहाँ आत्मा विदित हुई, स्पर्श और स्थिति मिली, तो अंश खत्म और अंशी ही शेष बच रहता है। जीव जो बूंद के गिलास के रूप में था वो खो गया, और परमात्मा जो व्याप्त है वही प्रवाह शेष बचा। यही है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब वही स्थिति मिल गई तो परमात्मा भी भिन्न नहीं रह गया या पिता भी अलग नहीं, इसलिए पिता वधे सुख होई। परमात्मा जब अपने में समाहित कर लेता है, अपनी स्थिति प्रदान कर देता है, उसके बाद में वो भी अलग अब नहीं बचा कि जिसकी हम खोज करें, तो सुख होई। जो शाश्वत सुख है, सहज सुख है, वो वहाँ नसीब होता है, वहाँ उसे वो प्राप्त कर लेता है। और गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोई। गो माने मन सहित इंद्रियां जो दौड़ धूप कर रही है, इसकी दौड़ को रोको, इन्हें काटो। जिस क्षण इंद्रियां भली प्रकार संयत हुई तो वैकुंठ सिदावे, कुंठ कहते हैं कोने को, बॉर्डर को, सीमा को, वैकुंठ कहते हैं वेसी असीम को, जिसकी कोई सीमा निश्चित न किया जाए, इसको बेहद अनहद वैकुंठ के ही शब्दों से महापुरुषों ने समझाया है। जहाँ इंद्रियों का भागदौड़ शांत हुई तो पहले भजन करते हैं तो मन उच्चाटन कर जाता है, क्यों कि इंद्रियां खींचती है किसी न किसी रस में। जहाँ इंद्रियां भली प्रकार संयत हुई, इनकी भागदौड़ टूट गई, कट गई, तहाँ वैकुंठ सिदावे, भजन मापतोल से ऊपर उठ जाता है, धारावाही हो जाता है। जागत में सुमरण करे सुवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए। सूरत जब तक जागो सुमरन करो, सोवो लो लगा के, सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले, कर्म ने टूट जाए। आठ पहर लागा रहे कर्म टूट ना जाए, ता ये भजन धारावाही हो जाता है कंटिन्यूअस। ये है माप तोल से ऊपर उठ गया, पहले था चार घंटे छह घंटे, अब जागत सोवत एक रस जब प्रवाहित हो जाता है, जब इंद्रियां विकारों की ओर खींचती ही नहीं तो चिंतन धारावाही हो जाता है। जागते सोते एक रस, ये भजन की एक वैकुंठ, बेहद अवस्था है। और जब तक इंद्रियां खींचती रहेगी तब तक दो घंटे भजन में बैठो, शायद आप आधा ही घंटा समय दे पाओगे। जिस मन को रुकना चाहिए वो तो हवा से बातें करेगा, किंतु भली प्रकार जहाँ संयम सदा, तो जो समय दोगे वो पूरा का पूरा आपके साथ है। इस तरीके से गोमाने इंद्रियों का संबोधन है। इन इंद्रियों को हम नहीं रोक सकते। मल की छूट मल ही के धोए, मल में लथपथ किसी चादर को आप मल में लपेटें, उसी में पिटाई करें कीचड़ में, और गप हो जाएगा कीचड़ उसमें, दाग नहीं छूटेगा। तो इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में जहाँ तक मन कल्पना करता है, जहाँ तक बुद्धि निर्णय लेती है, अपने निर्णय का भले अति इंद्रिय ज्ञान नाम दे दे, संज्ञा रख दे, लेकिन है तो सब माया। क्यों कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, वो सब माया है। जहाँ तक बारीक सूक्ष्म निर्णय कर लो है तो माया। अब इंद्रिय मन छोड़ के आपके पास है क्या? बुद्धि है विचार कर लोगे, मन है कल्पना करेगा, आंखें देख लेगी, कान सुन लेगा। इन यंत्रों के द्वारा हम माया ही तक पहुंच पाते। कुछ भी कर लोगे माया है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस माया का पार पाएं? तो मन बस हो ही तभी जब प्रेरक प्रभु वर्जे। ये अयुक्त असभ्य मन तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु रोकथाम करने लगे, आपकी आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, उतर आए जहाँ आप हैं और आपको सार संभाल करें, उठाए बैठाए चलाए। उन्हीं के संरक्षण में चलकर पुरुष इन इंद्रियों का नियंत्रण कर पाता है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं तो गो के लिए, इस संयम के लिए। और जहाँ संयम सदा, तो स्थिति मिल गई। माना कि गाय नाम का हमारे पास एक पशु है, हम उसके ऋणी भी हैं। सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक इस गाय ने हमारा भरण पोषण किया है। भगवान शिव ने पहली बार इस गो नाम के पशु को पकड़ा, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पशुपतिनाथ। चलते थे बैल पर, क्या गजब की सवारी थी भोलेनाथ की। तब से ये गोवंश का उपयोग इस ढंग से हुआ कि पूरे विश्व में खेती, अन्न उपार्जन बैलों के गोवंश के ऊपर, उर्वरक गोवंश के ऊपर, पौष्टिक मक्खन दूध दही, जो कुछ सृष्टि में आज भी इससे पौष्टिक कुछ भी नहीं है, ये गोवंश के ऊपर। डेनमार्क इत्यादि में गायें 60 किलो 80 किलो तक दूध देती, बड़ी कदर है वहाँ पर। ये सारा भार उसके ऊपर, पानी खींचना उसके ऊपर, पूर्वट चलते थे सिंचाई भी उसी के ऊपर, और पूरे विश्व में माल सप्लाई होता था तो गायों की पीठ पर। 1 लाख जो बैल रखता था पीठ पे लाद के ले जाता था, वो बंजारा कहलाता था, वणिज का सम्राट। इसलिए गाय ने मनुष्य को हर तरीके से जिलाया है। इसके बिना कोई जीवन ही नहीं था मनुष्य का पूरे विश्व में। इसलिए भारत के दयालु साम्राज्य में गाय को माता का सम्मान दिया, माता के तुल्य है, आदर किया और रक्षा दी। आप माताजी की भरपूर सेवा करके मातृ ऋण से तो ऋण हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा। मोक्ष तो माताजी का और आप दोनों का एक हरि के सुमरण से ही होगा। ठीक इसी प्रकार गाय की सेवा करके आप गोरिन से तुरिन हो सकते हो, लेकिन कल्याण आपका और गाय का भगवान के सुमरण से होगा। और कोई तरीका है ही नहीं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिनु पूछ विखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना, यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सिंह पूछ का पशु है वो बैल है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं, ये असंभव है। बारी मथे घृत हो यबरु शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये ये सिद्धांत या पेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू फेरने से तेल, ये असंभव कदाचित संभव हो जाए, किंतु वगैरह हरि के भजन के कोई भवपार नहीं हो सकता, ये सिद्धांत अकाट्य है। भगवान का एक नाम हरि है, जिस भगत को अपनाते हैं उसके शुभ अशुभ को हर लेते हैं, बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम हरि भी है। और कोई है ही नहीं तरीका, तो हम कह दो कि भाई गाय पूंछ पकड़ो बैकुंठ जाओ, ये और कोई भूत पूजो तंत्र ले लो मंत्र ले लो, अपवाद है, परंपरा रूढ़ियाँ हो सकती हैं। इसलिए एक हरि का भजन करो, चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो, लड़का खिलाते खुरपी चलाते हर परिस्थिति में याद आया करे, तब भजन तुम्हारा ठीक है। भगवान बैकुंठ से भाग के नहीं आते, वो आपके हृदय में निवास करते हैं। आप संकल्प बाद में करते हो, पहले जानते हैं, वो जानते हैं कि प्रेम पूरित हृदय से श्रद्धा से ये जीव मुझे पुकार रहा है, तुरंत सुविधा देने लगेंगे, कुछ दिन में बातें करने लगेंगे, आपको सोते से जगाएंगे, कहेंगे बैठ बैठा कर भजन। तो जाके रथ पर के सो ताके कौन अंदेशो, उस दिन से सारे संदेह दूर हो जाते हैं कि धर्म क्या है, भजन कैसे करें, भगवान ही मिटा देते हैं। इसलिए सब लोग सुमरण करो एक परमात्मा का, भजन एक से दो, भगवान एक से दो कभी हुआ ही नहीं, होंगे भी नहीं, हाँ नाम प्रभु के अनंत हैं, पूरा नाम कोई नहीं, वो अनिर्वचनीय है। बोलो श्री